गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्तदेशतारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्ये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गौरात्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद राय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है श्री श्री रुक्मणि द्वारकाधीश मंदिर इस्कान द्वारका में। प्रातः आज श्रीमद् भागवत के स्थान के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद गौर लीला में रामानंद राय का तिरुभाव तिथि है, उनकी महिमा का श्रवण मनन करेंगे। सो इस्कॉन द्वारका में आज प्रातः श्री रामानंद राय के तिरुभाव तिथि में श्री चेतना चरितमृत के मध्य लीला में जहाँ भगवान श्री कृष्ण चैतन्य का दक्षिण भारत में गोदावरी के तट पे रामानंद राय से मिलन हुआ है, उस आठवें अध्याय के पहले श्लोक में कविराज गोस्वामी ने एक बहुत अद्भुत सिद्धांत दिया है। तो इस श्लोक का पहले पाठ करेंगे और सिद्धांत को समझ के फिर रामानंद राय और चेतन महाप्रभु के बीच में जो संवाद हुआ है और एक अध्याय अंत लीला में महाप्रभु के मुख से रामानंद राय की महिमा का वर्णन प्रद्युम्न मिश्रा को बताया गया है, उसके भी पहले श्लोक का पाठ करने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं।
संचारिया राम अभिद भक्त मेघे स्वभक्ति सिद्धांत चया मृतानि गुराब्देत अमुना वित्रिणये तज्ञात्वा रत्नालयातं प्रयाति संचार्या रामभिद् भक्त मेघे स्वभक्ति सिद्धांत चयमर्तानि गौरवदेते अमुना वित्रिणये तज्ञत्वा रत्नालयतां प्रियत्ता संचारिया रामभिद्ध भक्ति मेघे स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानि गौराब्धेत अमुना वित्रणैश तज्ञत्वरत्नालयतां प्रियाति संचार्य रामाभिद् भक्त मेघे स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानि गौराब्धेते अमुना वित्रिणये तज्ञात्वा रत्नालयतां प्रयाति संचारिया रामाभिद् भक्त मेघे स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानि गौराब्धेते अमुना वित्रिणये रत्नालयतां प्रयाति माता जी संचार्य रामा विभक्त मेघे स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानि गौराब्धेते अमुना वित्रिणये रत्नालयतां
संचार या संचार करना मतलब किसी के अंदर कोई चीज डाल देना, संचारिया। और अंग्रेजी में कहेंगे तो कहेंगे एनपावर्ड, जिसमें अपनी शक्ति का संचार किया, अपनी शक्ति का संचार किया। किसमें? राम अवधि, जिसको रामानंद कहते हैं, रामानंद अवधि, जिसको रामानंद के नाम से जाना जाता है, उसमें शक्ति का अपनी संचार किया। तो अब रामानंद क्या बन गया? मेघे, भक्त मेघे। मेघ कहते हैं बादल को। अब वो भक्ति के रस का बादल बन गया। रामानंद क्या बन गया? भक्ति के रस का बादल बन गया। कैसे बन गया? उसके अंदर शक्ति का संचार किया। बोला किसने किया? तब कहते हैं गौर अवधि। अवधि कहते हैं समुद्र को, गौर सागर ने। गौर सागर ने, इसका मतलब बादल में पानी कहां से आता है? समुद्र से। तो गौर समुद्र ने रामानंद मेघ में अपनी शक्ति का संचार किया। क्या चीज अंदर डाला, किस चीज का संचार किया? स्वभक्ति सिद्धांत चया अमृतानी। स्वभक्ति मतलब कृष्ण भक्ति, गौर भक्ति। सो कृष्ण भक्ति का किस चीज का सिद्धांत? अमृतानी, जो भक्ति का अमृत है उसके सिद्धांत का संचार किया। चेतना महाप्रभु हुआ यहां समुन्दर, और उस समुन्दर से रामानंद राय बने बादल मेघ। और गौर समुन्दर में क्या है? भक्ति रस अमृत। तो वो भक्ति रस अमृत गौर समुद्र से निकल के रामानंद राय रूपी बादल में भर दिया। काय के लिए भर दिया? अमुना वितरणेश, एतय अमुना वितरणेश, जैसे रामानंद उसको वितरण करे किसके ऊपर। तब कहते तक ज्ञात्वा रत्नालयताम। रत्नालय कहते समुद्र को, जिसके पेट में रत्न होते हैं। वापस गौर समुद्र के ऊपर बरसात किया। गौर रूपी समुद्र के ऊपर उसी भक्ति के रस का वर्षा किया। कभी कभी ये प्रश्न पूछते हैं कि भाई समुद्र के ऊपर बरसात का क्या लाभ? पानी समुद्र का, वापस समुद्र में बादल डाले, लाभ क्या? कहते समुद्र के अंदर सिप्पी रहती है, वो जब स्वाति नक्षत्र का पानी पीती है तभी मोती बनते हैं। तो समुद्र के ऊपर बरसात की बहुत ज्यादा महत्व है, लगता नहीं है किसी काम का है, लेकिन मोती उसी पानी से बनता है जो ऊपर से गिरता है। अब सिद्धांत यहां ये है, समुद्र का पानी न पीने के काम आता है न खेती के काम आता है, आता है? ऐसे सीधा वेद शास्त्र या भगवान से कुछ भी किसी को पले नहीं पड़ेगा। सीधा भगवान के पास जाओगे कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे समुद्र का पानी, वो नहा के आओगे फिर भी नहाना पड़ेगा। समुद्र के पानी में नहाने के बाद भी कपड़े नहीं, फिर दोबारा नहाना पड़ेगा, वो तो काम नहीं आता है। फिर काम कैसे आता है? उसी पानी को जब सूर्य की तपत से बादल बनता है तो वही पानी पीने के लिए और खेती के लिए और सब काम में आता है। तो सिद्धांत क्या है कि जब कोई भक्त उसी भगवान की कृपा को लेकर बादल बन के वर्षा करता है तो संसार को लाभ होता है। इसलिए भगवत गीता में श्री प्रभुपाद ने साधु संतों को बादल के समान कहा है, जो बिना किसी भेदभाव के सबके ऊपर वर्षा करते हैं। अपना पानी नहीं है, पानी समुद्र का है, लेकिन उसको सबके लिए उपयोगी बनाते हैं। तो रामानंद है मेघ और चेतन महाप्रभु है समुद्र। पानी समुद्र का है, भक्ति के रस का अमृत है, उसने बरसाया किसके ऊपर? वापस चेतन महाप्रभु के ऊपर। और फिर चेतन महाप्रभु क्या हो गए? रत्नालय हो गए, कि उसके अंदर रत्न बन गए, क्योंकि बरसात के पानी से हीरे मोती बनते हैं, मोती बरसात के पानी से बनते हैं। वैसे समुद्र का पानी सिप्पी पीती नहीं है, मोती बनते नहीं। ये बहुत बड़ा गंभीर सिद्धांत है कि न कहीं किसी को वेद से कुछ लाभ होगा, न ही सीधा भगवान से लाभ होगा, जैसे समुद्र से नहीं होता है। बादल ही हमारा हित करने वाला होता है। इसलिए भक्ति का सिद्धांत भगवान ने भक्तों को ही दिया है, जो किसी को दे सकते हैं, भगवान किसी को नहीं देते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु या रामानंद राय के माध्यम से स्वयं भक्त के रूप में आए हैं, स्वयं भक्त के रूप में आए हैं, तो भक्ति कैसे मिलेगी? बोलो, भगवान के प्यारे भक्तों से मिलेगी। ये सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं। तो ये श्लोक बहुत अति अति रसमय श्लोक है। अब इसका मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेशन पढ़ता हूं। श्री चेतना महाप्रभु हु इज नोन एज गौरंगा इज द ओशन ऑफ ऑल कंक्लूसिव नॉलेज इन डिवोशनल सर्विस। भगवान श्री चेतना महाप्रभु जिसको गौरंगा कहते हैं, वो सारे भक्तों के सिद्धांत का सागर है। ही एम्पावर द रामानंद राय हु मे बी लाइकन टू द क्लाउड ऑफ डिवोशनल सर्विस। उन्होंने रामानंद राय जो भक्ति रूपी बादल है उसमें अपनी सारी भक्ति के रस का अमृत भर दिया। दिस क्लाउड वॉज फिल्ड विद द वर्ड ऑफ ऑल कंक्लूसिव पर्पस ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड वॉज एम्पावर्ड बाय द ओशन टू स्प्रेड दिस वाटर ओवर द सी ऑफ चेतन महाप्रभु। अब उनके अंदर ये भक्ति के रस का अमृत भर दिया और कहा कि इसको वापस बरसाओ। बोला कहां बरसाऊं? बोला श्री चेतना महाप्रभु रूपी सागर के ऊपर। और इससे हुआ क्या? दस द ओशन ऑफ चेतना महाप्रभु बिकम फिल्ड विद द ज्वेल्स ऑफ द नॉलेज ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। तो अब समुद्र के अंदर रत्न पैदा हो गए, क्योंकि बरसात के पानी से रत्न पैदा होते हैं, पहले नहीं होते। तो ये बहुत बड़ा सुंदर भाव यहां दिया हुआ है। इसके बाद रामानंद राय है कौन? भवानंद के पुत्र है और ये जगन्नाथपुरी के पांच पुत्र उनको थे, इसलिए भवानंद को पांडव मानते हैं। ये पांडु जी है और ये उनके पांच पुत्र हैं, जो कृष्ण लीला में महाराज पांडु थे वो और उसके सारे पुत्र भगवान श्री कृष्ण की जैसे सेवा में थे, ऐसे भवानंद ने अपने पांचों पुत्रों को चेतना महाप्रभु की सेवा में दे दी। तो उनमें से जो रामानंद राय थे वो महाराज प्रताप रुद्र के सरकार में, महाराज प्रताप रुद्र की सरकार में मद्रास के गवर्नर थे। मद्रास के गवर्नर थे। और वेदांत के अनुस्वार और साधु समाज में सरकार की नौकरी करना या तनख्वाह लेना शूद्र का काम माना जाता है, क्योंकि क्षत्रिय को मिलता है कर, ब्राह्मण को मिलती है दक्षिणा और शूद्र को मिलता है तनख्वाह। ये वर्ण की विभाजन ऐसी है और तीनों को देता है वैश्य, देने वाला वैश्य, कमाता वही है। सरकार को टैक्स देगा, ब्राह्मण को दक्षिणा देगा और काम करने वाले को तनख्वाह देगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की यात्रा के लिए प्रस्थान किया तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको कहा कि आप निश्चित रूप से रामानंद राय से मिलना, आपको बड़ा आनंद मिलेगा, उनकी कृष्ण भक्ति का जो भाव है वो अनुकूल है बहुत आपके जो स्वभाव है उसके। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से निकले तो वहां से बिहर नरसिंह मंदिर का दर्शन करने के बाद गोदावरी के तट पे आए। गोदावरी के बहुत बड़ा विशाल गोदावरी बहती है, उसके तट के ऊपर अब एक तरफ कौन सा नगर है आंध्र प्रदेश का, ना हमारा मंदिर इस्कान का वहां बनाया है अभी एक तट के ऊपर, अब यह नाम आ जाएगा, विजयवाड़ा से आगे है गोदावरी के तट के ऊपर मेला लगता है बहुत बड़ा। तुम्हारे भक्तों ने वहां मेला लगाया था, वहां के प्रशासन प्रसन्न होकर बिल्कुल नदी के किनारे के ऊपर जमीन दे दी और वहां बहुत सुंदर मंदिर बना दिया, और बिल्कुल नदी के किनारे के ऊपर मंदिर है, सत्य गोपीनाथ ने उस मंदिर का निर्माण कराया। तो दूसरे किनारे के ऊपर आज भी स्थान है गौरिया मठ का, जहां चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का मिलन हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु सुबह गोदावरी में स्नान करके और अपना कीर्तन करके जप कर रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे रामानंद राय से कैसे मिलना है। तो थोड़ी देर में देखेंगे, देख रहे थे तो कहीं से कुछ ढोल बज रहे हैं, कुछ साज बज रहे हैं और ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करते हुए आ रहे हैं, और फिर देखा कि पालकी में रामानंद राय को लाए हैं कि उतारा है, उसने स्नान किया है। तो महाप्रभु ने अनुमान लगाया कि यही यहाँ का गवर्नर है और इसी के विषय में मुझे चैतन्य महाप्रभु ने मिलने का कहा है। तो महाप्रभु का मन कह रहा था कि मैं भाग के उसको जाके मिलूं। तो लिखा ऐसा है कि मन से तो भाग के गए लेकिन शरीर से स्थिर वहीं बैठे रहे। लेकिन रामानंद राय ने देखा कि बड़ा चमत्कारी पुरुष ये सन्यासी, बड़ा इसमें प्रकाश निकल रहा है, ब्रह्म ज्योति का जैसे आभास निकल रहा है। तो रामानंद राय नहाने के बाद चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए दंडवत आके किया, तो महाप्रभु ने उसको उठा के आलिंगन किया और दोनों कृष्ण भक्ति के आनंद में इतने विभोर हो गए कि आंसू के आंखों से आंसू और शरीर थर थर कांप रहा है। तो सारे ब्राह्मण देखे आश्चर्यचकित हुआ कि पहले तो ये सन्यासी सामान्य नहीं लग रहा है और फिर एक सूदर को कैसे आलिंगन, और ये हमारा जो गवर्नर है ये बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा विद्वान है, ये बच्चों की तरह ऐसा विचलित कैसे हो रहा है, चंचल कैसे हो रहा है, तो बहुत गंभीर है। ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य को बहुत गंभीर वेदांत का विद्वान मानते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के साथ जब सरोवर में नहा रहे हैं तो बच्चों की तरह एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे हैं, तो लोग रहे इनको हो क्या गया, ये बच्चे कैसे हो गए, ये तो अच्छे खासे समझदार पढ़े लिखे शास्त्र जानने वाले, ये तो बच्चों का जैसा काम कर रहे हैं, क्या बात है। तो महाप्रभु ने ऐसे देखा कि ये ब्राह्मण आश्चर्य कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना भाव को छुपा लिया और रामानंद को कहा कि मुझे बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की, और स्वरूप दामोदर अपना सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुझे आपसे मिलने का कहा था और आज मुझे आपसे मिलके बड़ा आनंद मिला, उसने मेरे ऊपर बड़ी दया की है। रामानंद कहते हैं आपसे मिलके स्वरूप दामो सार्वभौम बड़ा दयालु है कि वहां बैठे हुए मेरा हित किया और आपसे मिलने का मेरे को एक शुभ अवसर दिलाया। महाप्रभु कहते नहीं नहीं, मैं मायावादी सन्यासी हूं, आप बहुत बड़े विद्वान कृष्ण भक्त हो, अब ऐसे करेंगे हम फिर दोबारा मिलेंगे। तो उस वक्त वो अपने घर चल के शाम को वापस आए, दोपहर का स्नान महाप्रभु ने किया, फिर आए उन्होंने आलिंगन किया, उन्होंने प्रणाम किया, महाप्रभु ने आलिंगन किया और फिर पूरी रात दूसरे दिन सुबह तक बातें होती रही। इन बातों को कहते हैं रामानंद और चैतन्य महाप्रभु का संवाद। उस संवाद में उन्होंने प्रश्न एक ही पूछा है कि सबका सबका श्रेय क्या है, सबसे अच्छा उत्तम कार्य मानव के लिए क्या है। तो शुरू में कहा वर्ण आश्रम के अनुसार अपना जीवन बिताए वो अच्छा है। महाप्रभु ये ठीक है और आगे कहो। तो बोला ये तो ठीक है पर निष्काम कर्म करे वो अच्छा है। बोला ये भी ठीक है इससे और आगे कहो। तो कभी भक्ति करे तो सबसे अच्छा है। बोला ये फिर भी ठीक है। उसमें कहा कि भक्तों के संग में श्रवण करे, बोला ये ठीक है। सताम प्रसंगान मतवीर्य, ये जब उदाहरण दिया कि भक्तों के संग में भगवान की कथा सुने ये अच्छा है। बोला नहीं कुछ और आगे कहो। बोला फिर भक्ति में दास्य रस, सखा रस, वात्सल्य रस, फिर माधुर्य रस तक जाए तो बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण। सो माधुर्य रस तक अगर भक्ति में जाए तो बहुत अच्छा है। बोला ये बहुत अच्छा है, भला का और आगे कहो। तो फिर माधुर्य रस में गोपियों से राधा रानी का, और फिर उनकी अपनी एक कविता को जब गाने लगे तो महाप्रभु ने उनके मुख के ऊपर हाथ रख दिया कि बोले इससे आगे मत कहो, आप सारे भक्ति के रहस्य और तत्व को जानते हो, मेरा तो बहुत सौभाग्य है कि आपसे ये सब सुनने को मिला। फिर उस दिन विदा हुए और विदा होते समय महाप्रभु ने कहा ऐसे करो अब ये नौकरी छोड़ो, अब तुम यहां से ये गवर्नरी को, महाप्रभु ने यहां से गवर्नरी छुड़ाई और रूप गोस्वामी को मुख्यमंत्री जो पद पर, सनातन गोस्वामी को मुख्यमंत्री का पद छुड़ाया, रूप गोस्वामी को वित्त मंत्री का पद छुड़ाया, रघुनाथ दास भट्ट को बहुत बड़े ताऊ और चाचा के एक ही करोड़पति का बच्चा था उसको घर से निकाल के भिखारी बनाया, हाँ कृष्ण नाम का भिखारी बनाया। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद कहते थे महाप्रभु ने रतन और हीरे ऊंचे पद से उतार के भक्ति में लगाए और मैंने यहां धरती के ऊपर गटर में गिरे हुए लोगों को उठा के मान बनाया, इसलिए ये भक्ति के कदर को नहीं जान पा रहे। उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि महाप्रभु कहां कहां से। तो कहा आप यहां से अब ये नौकरी का त्याग करके जगन्नाथपुरी में आ जाना, मैं बस ये यात्रा मेरी पूरी करके आता हूं, फिर वहां बैठ के हम कृष्ण कथा का रस आस्वादन करेंगे। और रामानंद राय ने ऐसे ही किया, जब तक महाप्रभु वापस लौटे नहीं, जैसे आ गए उससे पहले प्रतापद्र से छुट्टी लेके आके जगन्नाथपुरी में बैठे और महाप्रभु के संग में रहे। अंतिम समय में महाप्रभु के पास दो ही व्यक्ति विशेष रूप से रहते थे, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर। और ये सारी कथा स्वरूप दामोदर के डायरी में से कविराज गोस्वामी ने लिखी है। तो स्वरूप दामोदर और ये ललिता और विशाखा दोनों चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव में, जब कृष्ण के वियोग में महाप्रभु तड़पते थे तो ये कृष्ण की कथा और कृष्ण के राधा रानी के को कृष्ण के गीत सुनाकर संतुष्ट करते थे दो। तो आज हमारा विचार है कि कुछ चीजें, दूसरे दिन फिर रामानंद राय आए और ये 10 दिन तक रामानंद राय और चेतना महाप्रभु के बीच में संवाद चला और जाने के समय एक दूसरे से विदा होना नहीं चाहते थे। दूसरे दिन शाम को जो वार्ता हुई है ये आज हम इसलिए कहना चाहते हैं कि बड़े अच्छे प्रश्न महाप्रभु ने पूछे हैं और आप अपने जीवन में देखिए कि हम ऐसे कर रहे हैं क्या। पहले महाप्रभु कह रहे हैं प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सार। ये तो ऐसा शब्द है कि आपको इसका अर्थ आता है भाई, विद्या में सबसे सार विद्या कौन सी है। राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। कौन सी विद्या सबसे महान है, बोला कृष्ण भक्ति के अलावा और कोई विद्या है ही नहीं, बाकी सारी अविद्या है। तो अब आप देख लो कि आपके पास विद्या है कि अविद्या है, ये सारी डिग्रियां हैं बेकार है? जब मंत्री पद बेकार, गवर्नर पद बेकार, तो आप वाली डिग्री किस काम की? तो ये पहला प्रश्न ये है कि सब विद्याओं में कौन सी विद्या महान है? अब दूसरा प्रश्न पूछे, कीर्ति गुण मध्य जीवेर कौन बड़ कीर्ति? कीर्ति का मतलब किसी आदमी की महिमा, बड़ा मशहूर कैसे हो, फेमस कैसे हो, कौन सी कीर्ति आदमी को चाहिए? कृष्ण भक्त बलिया यहां रहे ख्याति। कोई कहे कि कृष्ण का भक्त है तो ये सबसे बड़ी ख्याति है, मशहूरी है। विद्या में कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्त सबसे बड़ी ख्याति है। कितने राजा महाराजा मर गए, किसी का नाम नहीं है, लेकिन ध्रुव और प्रहलाद का नाम आज भी अमर है, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। तो भक्ति अमर ख्याति है। तो क्या करना चाहिए? बोला कृष्ण भक्ति यहां है ख्याति, ये है सबसे उत्तम कारण। अब तीसरा प्रश्न, इसके ऊपर प्रभुपाद जी का 3-4 पेज का पर्पट है असल में। अब तीसरा प्रश्न, संपत्ति र मध्य जीवे र कौन संपत्ति गणी? संपत्ति का मतलब धन। आदमी के पास जो धन होता है उसमें से महान धन कौन सा है? राधा कृष्ण प्रेम यार से ही बड़ा धनी। जिसके पास राधा कृष्ण का प्रेम है वो ही बड़ा धनी है, पैसे वाला धनी नहीं, जगह जायदाद वाला धनी नहीं, कृष्ण राधा कृष्ण का प्रेम जिसके पास है वो धनी है। ये सब लिख के रामानंद राय के उत्तर महाप्रभु के बहुत अच्छे लिख के रोज ध्यान करने के ऐसे ध्यान। धनी कौन है? तो बोले धनी वो है जो राधा कृष्ण का प्रेम है। फिर कहते हैं दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर, सबसे से बड़ा दुख कौन सा है, दुखों में सबसे बड़ा दुख क्या है? कृष्ण भक्त वृह बिना दुख नहीं देखी पार। भगवान के भक्तों से अलग होते हैं उससे ज्यादा बड़ा कोई दुख है ही नहीं। सबसे बड़ा दुख है भगवान के भक्तों का विरह, कहीं भक्त मिलने के बाद बिछड़ जाए, इससे बड़ा कोई दुख दुनिया में नहीं है। तो दुख एक ही है सुख, जिसका मतलब सुख क्या है? भगवान के भक्तों का संग। तो सुख का सागर है भगवान के भक्तों का संग, और दुख है भगवान के भक्तों से बिछड़ना। मुक्त मध्य कौन जीव मुक्त करी मानी, जो कहते हैं मुक्त हो गए उनमें से मुक्त किसको माने? कृष्ण प्रेम यार सही मुक्त श्रोमणि, इसका मतलब जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम है वही मुक्ति पाने वालों में श्रोमणि है, सबसे ऊपर है। तो बाकी सारी मुक्तियां किसी काम की नहीं। गान मध्य कौन गान जीवे रे निज धर्म, गान मध्य मतलब गाने वाली चीजों में जीव के लिए सबसे उत्तम धर्म कौन सा है? राधा कृष्ण प्रेम के लिए यही गीते रमरम, राधा कृष्ण के प्रेम के गीत जो गाता है यही गीत सबसे अच्छा गाने योग्य है। तो गाना चाहिए तो क्या गाना चाहिए? रूप गोस्वामी क्या गाते थे? राधा कृष्ण प्रेम क्या, राधा कृष्ण प्राण मोर प्रेम प्राण मोर जुगल किशोर, और दूसरा क्या गाया? दूसरा वाला कौन सा गाते थे? कृष्ण प्रेम मई राधा प्रेम मयो कृष्ण। एक और जो राधा रानी के दिन पे भजन गाते हैं, कौन सा गाया? राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल मैते, ये गाना है तो ये गाओ, बाकी सारा गाना है खाना खराब। ये खाना खराब मतलब जो खाते हो वही खराब कर देता है। गान मध्य
कौन सा गान महान है, राधा कृष्ण प्रेम केली, जो राधा कृष्ण के प्रेम लीला का वर्णन है वो सबसे मुख्य है। श्रेय मध्य कौन श्रेय जीवे रहे सार, श्रेय का मतलब क्या है, जो हितकारी है सबके लिए, वो सबसे अच्छा हितकारी सबके लिए क्या है, कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं आर। आपके जीवन में श्रेय मतलब बहुत अच्छा सौभाग्य कैसे होगा, बोले जब कृष्ण भक्तों का संग है यही सौभाग्य है, सौभाग्य है श्री कृष्ण भक्तों का संग।
कहां कर स्मरण जीव करीब अनुक्षण,
किसका स्मरण हर समय करना चाहिए, जीव को हर समय किसका स्मरण करना चाहिए,
कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण,
कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण। अगर स्मरण करना है हम करते हैं कृष्ण के नाम का स्मरण, हरे कृष्ण जपते, ये नाम सुमरण है। ये ध्यान दीजिए, ए हमारी माला का नाम है सुमरण, सुमरणी माला को संस्कृत में सुमरणी कहते हैं, उसके ऊपर जप कहते हैं, इसको कहते हैं नाम सुमरण। ऐसे भगवान की लीला का सुमरण होता है, जैसे हमारे गोस्वामी कविराज गोस्वामी ने एक पुस्तक और लिखा है गोविंद लीला अमृत, जिसमें 24 घंटों में तीन तीन पैर के 8 पैर है, 24 घंटे में 8 पैर होते हैं, तो अष्टयाम लीला, हर 3 घंटे में राधा कृष्ण कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, और 12 महीने में कहाँ कहाँ रहते हैं, कौन से दिन कहाँ होते हैं, किस समय कहाँ होते हैं, तो इसको कहते हैं लीला स्मरण। हमारे गोस्वामी इस लीला का स्मरण करते थे हर समय, भाई से ध्यान होना चाहिए इस वक्त राधा कृष्ण कहाँ होंगे, टाइम हो रहा है 9 हो रहा है तो गैया चराने गए हैं, 12 बजे राधा कुंड पे आ जाएंगे, वो राधा कृष्ण का मिलन होगा, फिर नौका क्रीड़ा होगी, तो ये समय, फिर शाम को घर लौटेंगे, फिर कहाँ 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 इनका मिलन है, ये इसको कहते हैं लीला स्मरण। ऐसे गौरंगा महाप्रभु की लीला का स्मरण है, 24 घंटे में चेतना महाप्रभु कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या क्या करते हैं, उसको कहते हैं गौर लीला स्मरण। तो ये जैसे नाम स्मरण है ऐसे लीला स्मरण है, ऐसे भगवान के गुणों का स्मरण करना, कितना दयालु है, कितना कृपालु है, कितना भक्त वत्सल है, ये भगवान के गुण और भक्तों के साथ जो उनका व्यवहार है उसका स्मरण, ये लीला, ये गुण से उनकी लीला और गुण दोनों इनका स्मरण करे, ये सबसे उत्तम स्मरण है। जैसे गौड़ीय वैष्णव नाम स्मरण प्रधान है, निम्बार्क लीला स्मरण ज्यादा करते हैं, उनका लीला स्मरण होता है, और राधा कृष्ण की लीला का स्मरण करते, तो वह संप्रदायों में भी स्मरण के ऊपर गुण रूप लीला इसके स्मरण की बात है। और कविराज गोस्वामी का ये पुस्तक बहुत एडवांस डिवोटीज जो है वो लीला के स्मरण का ध्यान करते हैं। अब पूछते हैं ध्याय मध्य जीवेरा कर्तव्य कौन ध्यान, वो हो गया स्मरण, अभी हो गया ध्यान, देखो दोनों में अंतर है, स्मरण माला के ऊपर होता है, जैसे ध्यान कैसे करें, राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यान प्रधान, अगर आंखें बंद कर, ध्यान का मतलब होता है जो चीज सामने नहीं है उसको देखा जाए, जब ध्यान शब्द आता है ना तो जो चीज सामने नहीं है उसका ध्यान किया जाता है, सामने है उसको ध्यान करने का मतलब है किसको हृदय में हमेशा धारण करना चाहिए, बोलो ध्यान के बाद धारणा आती है, योग सिद्धि में पहले ध्यान फिर धारणा, धारणा पहले फिर ध्यान, तो किसको हृदय में धारण करना चाहिए, तो कहते हैं राधा कृष्ण के पदाम्बुज, भगवान राधा कृष्ण के चरण कमल, तो असल में भगवान के चरण कमल ऐसे हृदय में सदा विराजमान रहे, ये सबसे बड़ा ध्यान है। साल में एक बार राधा रानी के चरण दिखाते हैं राधा अष्टमी के ऊपर, तो उन चरणों का ध्यान करके रखना चाहिए कि लाल लाल वो लगा हुआ है अल्तो, और बहुत कोमल चरण है राधा रानी के, और श्री कृष्ण तो टेढ़ा खड़े डेढ़ चे, एक पांव ऊपर एक पांव सीधा, और पांव जो चाहो पांव टेढ़ा है उसकी बहुत लाल लाल तलुआ दिख रहा है, और फिर बहुत सुंदर उनको फूल की माला और एंकल बेल क्या पायल पहनी हुई पहनाई हुई है। तो ये है, तो हे है हृदय के अंदर, ये तो छपा होना चाहिए, यही ध्यान है। अब कोई कहे कि लाल बल्ब का ध्यान करो अरे लाल बल्ब का ध्यान करो तो ट्रक के पीछे भागते फिरो जब ब्रेक लगाए तब ध्यान करते रहना लाइट का ध्यान करो, लाइट चली जाए तो तुम्हारा ध्यान समाप्त ये कोई ध्यान है भाई? राधा कृष्ण के चरणों का ध्यान, चरण कमलों का ध्यान करो। कैसे चरण कमल है? वो तो दस नख चंद्र है, जो नाखून है वो चंद्रमा है, दस नख चंद्र, तो कोटि चंद्रों का उससे प्रकाश निकलता है, इतनी शीतलता निकलती है, लाइट से तो आंखें चिंदिया जाएंगी लेकिन वो शीतल है। ऐसे बहुत से मूर्ख लोग हैं लाल ऐसे बैठे होते हैं, ये किसका ध्यान करना है? अब ये महाप्रभु ने ये पूछा इसलिए कि क्या काम करना चाहिए, जो ध्यान कर रहे हैं उसको बोला राधा चरण के कमलों का, चरण कमलों का ध्यान सर्व ध्यान का सार है।
सर्व त्यजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास,
अभी सब कुछ छोड़ के जीव को कहाँ जाके रहना चाहिए?
व्रज भूमि वृंदावन जहां लीला रास,
तो जाना वृंदावन में रहना चाहिए जहां भगवान की लीलाएं हुई। कहाँ जाके रहना चाहिए? बोले वृंदावन में जाके सब कुछ छोड़ के रहना चाहिए।
श्रवण मध्य जीवेर कौन श्रेष्ठ श्रवण,
क्या चीज सुननी चाहिए? सबसे श्रेष्ठ सुनने के लिए क्या है?
राधा कृष्ण प्रेम के लिए करण रसायन,
राधा कृष्ण प्रेम के लिए करण रसायन, कान के लिए जो रसायन दवाई है वो राधा कृष्ण के प्रेम के लिए है, लीला है। और इसी को दसम स्कंद में परीक्षित महाराज कहते हैं, निवर्द त्रिशय उपगीय मानाय भव औषधि श्रोत मनोभिराम। सुखदेव गोस्वामी आपके मुख से ये जो राधा कृष्ण की लीला निकल रही है ये असल में दवाई है। किसकी? भव रोग की। ये जन्म मृत्यु से मुक्त कराने वाली दवाई है। बोले दवाई कड़वी होती है, कैसे लगेगी? इंजेक्शन लगेगी क्या? नहीं नहीं नहीं, कानों के द्वारा पी जाती है। इसको पीने के लिए कानों से पीने की है। कैसी है? बोलो बहुत मीठी है। बोलो ये संसारिक भोगियों को भी अच्छी लगती है, योगियों को भी अच्छी लगती है, और भक्तों को तो ये रसायन है उनके लिए, वो यही पीते हैं तभी आनंद लेते हैं, नहीं तो वो मर जाएंगे। वो पीते हैं तब जीते हैं। कौन ऐसा पशु घनात है, कौन ऐसा आत्मघाती है जो हरि कथा को नहीं सुनेगा, राधा कृष्ण की लीला को नहीं सुनेगा? ऐसा पशु घनात कौन है? पशु घनात का मतलब अपने आप को आत्महत्या करने वाला कौन है? और दूसरा अर्थ है पशुओं की बलि ना दे के केवल स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं लेकिन राधा कृष्ण नहीं जपे तो बेकार है पशु घनात के। ये दो तीन अर्थ लिखे है शास्त्रों में। तो अब कौन सा काम सबसे शरण उत्तम है? राधा कृष्ण प्रेम के लिए करण रसायन। इन सब के ऊपर श्रील प्रभुपाद का बहुत सुंदर तात्पर्य है, कभी बैठ के पढ़ना चाहिए क्योंकि ये सिद्धांत सार है हमारे लिए।
उपास्य मध्य कौन उपास्य प्रधान,
उपास्य का मतलब किसके पास बैठना चाहिए, उप मने नजदीक, आस्य मतलब बैठना, भाई किसके नजदीक बैठना चाहिए?
श्रेष्ठ उपाय युगल राधा कृष्ण नाम,
किसके निकट बैठना चाहिए, किसको किसका ध्यान करना चाहिए? पहले ध्यान आ गया, अब उपासना आ गई। उपासना का अर्थ होता है वैसे पूजा करना, क्योंकि पूजा करेंगे नजदीक जाके करेंगे ना भाई, हाथ लगाना है, चरणों में फूल चढ़ाने हैं, वस्त्र पहनाने हैं, तो नजदीक है। तो उप का मतलब नजदीक, आसन का मतलब बैठ के बैठना, क्या के लिए, पूजा करने के लिए, उपासना का मतलब है पूजा। श्रेष्ठ उपास्य युगल राधा कृष्ण नाम, आपको उपासना करनी है तो राधा कृष्ण के नाम की करो। ये नाम की उपासना का ये भाव बहुत अच्छा है। चेतना महाप्रभु की पूजा राधा हरे कृष्ण मंत्र जपने से होती है, तो पूजा का जो विधान है हरेक का अपना अपना है। तो रामानंद राय ने वो भाव बताया है कि जैसे पूजा भगवान श्री कृष्ण की 16 उपचार से पूजा होती है, ऐसे चेतना महाप्रभु की पूजा है हरे कृष्ण मंत्र के जपने से। जितना कीर्तन करेंगे उतना महाप्रभु की पूजा बहुत सर। तो राधा कृष्ण नाम उपासना है। तो असल में हमारी उपासना क्या है, जितना अधिक हो उतना कीर्तन करें। तो कीर्तन सबसे बड़ी उपासना है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी जब हमारे कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो कहा कि अभी वृंदावन में इस मंदिर का उद्घाटन करना है तो निश्चित रूप से पंडितों को बुलाएंगे, यज्ञ कराएंगे, लेकिन भक्तों को कहा इनको करने दो, स्वा तुम जोर से कीर्तन करते रहो, क्योंकि असल में उपासना कीर्तन है। ये तो इसलिए कर रहे हैं कि लोग माने कि हमने इसकी मंदिर की उद्घाटन किया है, समाज में मानने के लिए है, लेकिन असली उपासना है भगवान की, कीर्तन करो जरा जोर से। तो ये कीर्तन उनके जीवन का सार है। मुक्ति भुक्ति वांचे यही कहां दोहार गति। अब पूछते हैं जो कुछ लोग मुक्ति मांगते हैं और भुक्ति मांगते हैं, मुक्ति मांगना मतलब ज्ञानी, भुक्ति मांगना मतलब कर्मी, इन दोनों की गति क्या होती है, ये कहां जाएंगे। स्थावर देह 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 हां देव देह याचे अवस्थिति। एक को मिलेगी स्थावर देह, मतलब बनेगा पेड़, इसमें जो हिल नहीं सके, और दूसरा याचे देव अवस्थि, और दूसरा बनेगा देवता। अब मैं इसका अंग्रेजी में पढ़ लूं तो आसान होगा। एंड व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ दोज हु डिजायर लिबरेशन एंड दोज हु डिजायर सेंस ग्रेटिफिकेशन। चेतना महाप्रभु आज बताइए, कर्मियों एक है क्या, मुक्ति और भुक्ति वाले, इनकी गति क्या है। रामानंद राय, दोज हु अटेम्प्ट टू मर्ज इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड विल हैव टू एक्सेप्ट बॉडीज लाइक दोज ऑफ ट्रीज। स्थावर पेड़ बनेंगे, मुक्त मुक्ति के कांक्षी पेड़ बनेंगे या पहाड़ बनेंगे जो हिल नहीं पाएंगे। And those who are overly inclined towards sense gratification will attend the bodies of demigods. और दूसरे जो बड़े बड़े यज्ञ करके भोग चाहते हैं स्वर्ग में, उनको देवताओं के शरीर मिलेंगे। तो भोग वालों को तो शरीर अच्छे मिलेंगे और मुक्ति वाले पेड़ बनेंगे, वो भी कांटे वाले बबल के, लोग पत्थर मारेंगे किसी के छाया के भी काम के नहीं है। रसज्ञ काक चूसे ज्ञान मिंब फल, रसज्ञ कोकिल खाए प्रेमार मुकल। अब कहते हैं कि ये जो 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 जो, जो मुक्त होते हैं वो कैसे हैं, बोले वो रस को जानते नहीं है, वो कौए की तरह काक की तरह नींब में से रस निकाल के पीने का प्रयास करते हैं, और जो रसज्ञ है वो कोयल की तरह बहुत बहुत आम के जो नए नए कपोल है उसको खाते हैं। रामानंद राय कमेंट, दोज हु आर ज्वाइड ऑफ ट्रांसेंडेंट मेलोस आर लाइक द क्रोज दैट सक द जूस फ्रॉम द बिटर फ्रूट ऑफ द नीम ट्री ऑफ द नॉलेज। ज्ञानी मुक्त, वेर इज दोज हु एंजॉय मेलोस लाइक दैट ऑफ कुकूस कोयल who eat the buds of the mango tree of love of Godhead. तो अब इसके बाद थोड़ा सा रामानंद राय कहता है ये अभागे ज्ञान के पीछे खुश्क शुष्क काम कर रहे हैं, मधुर लीला नहीं सुन रहे हैं। अब दूसरा इसमें नहीं है लेकिन वो भी एक श्लोक पढ़ लेते हैं, कौन सा अंत्यलीला का, अंत्यलीला सो रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के प्राण त्याग मतलब शरीर सो शरीर तोटा गोपीनाथ में प्रवेश करने के बाद महाराज प्रताप रुद्र तो नीचे गिर पे पड़े बेहोश होके, और रामानंद राय भी फिर शरीर रखने के लिए तैयार नहीं थे, तो आज के दिन उनका तिरोधाभाव तिथि है। लेकिन अब एक और श्लोक का रसास्वादन करते हैं 5 मिनट के लिए। अंत्य लीला, और इनका घर आज भी रामानंद राय जी का घर जो बगीचा है, क्या नाम, अनंत जगन्नाथ मिश्र गार्डन न, जगन्नाथ वल्लभ जो जो उद्यान है उसके अंदर रामानंद राय का घर आज भी उधर देखा जा सकता है। ये श्लोक संस्कृत का सुन लीजिए। वैगुण्य कीट कलितहा पैशोन्य वरुण पीड़िता दैन्यार्णवे निगमनो अहम चैतन्य वैद्यमाश्रय। वैगुण्य कीट कलितहा, कीट तो सबको पता है, कीट जो कीड़ा है, और कलित का मतलब काटता है। जो कीड़े काटते हैं कौन से कीड़े, वैगुण्य। वैगुण्य का मतलब जो भगवान से बेमुख संसार के काम में लगे हुए हैं, भगवान के गुणगान नहीं करते हैं लेकिन अपने गुणगान के लिए बहुत बड़े कामों में लगे हुए हैं, वो वैगुण्य ऑफ द मटेरियल एक्टिविटीज। वैगुण्य कीट कलित, और उस काटने से हो क्या गया हमको, भौतिक संसार के भोगों के पीछे भागते भागते अपने नाम प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ते दौड़ते, और इन काम के कीटाणु ने काट काट के क्या कर दिया, बोला पैशून्य कर दिया। पैशून्य का मतलब फोड़ा बन गया। कैसा फोड़ा बन गया, जो अंदर में दुख, अंदर दुख दुख रहा है, और पैशून्य पी हाँ वर्ण पीड़ित, वो इसमें पैशून्य का अर्थ लिखा है, उसमें विशेषता के, जब ऐसे दुनिया के अंदर जब काम के पीछे भागते हैं तो पहले चीज क्या, बीमारी आती है उससे पास, उसके पास ज्यादा क्या है, क्यों है मेरे पास इतना कम क्यों है, तो ये आई ईर्ष्या। तो काम के कीटाणु ने ईर्ष्या का फोड़ा बना दिया है। पैशुण्य का मतलब ईर्ष्या, और वर्ण का मतलब फोड़ा, और पीड़ित का मतलब दुख। तो संसार के भोग के पीछे भागते भागते ईर्ष्या का हमारे को बहुत बड़ा गांठ हो गया है, जो अंदर में बहुत पीड़ा दे रहा है। अब क्या करना चाहिए, तब कहते हैं दयनीय अर्णवे निगमनो अहम। अब मैं निम्रता पूर्वक, दयनीय का मतलब निम्रता पूर्वक, और निगणो अहम, अब मैं चैतन्य वैद्यम आश्रय, चैतन्य महाप्रभु वह डॉक्टर, उसका शरण ले रहा हूं ताकि मेरे ईर्ष्या रूपी फोड़े को और काम रूपी कीटाणु का विनाश कर दे। अब इस कथा क्या है, इसमें इसमें कथा है कि रामानंद राय अपनी कविताओं को लिखने के बाद भगवान जगन्नाथ के लिए उन कविताओं को गाने के लिए सुंदर दासी, जो देवदासियां होती थी, देवदासी का ये है कि पहले क्या होता था, साधुओं को आदमी अपना लड़का दे देते थे साधु बनाने के लिए, ऐसे लड़कियां होती थी वो भगवान जगन्नाथ के गाने के लिए देते थे, तो भगवान को नृत्य करने, उनको देवदासियां कहते थे। तो उन देवदासियों को रामानंद राय का मन, महाप्रभु कहते हैं, इतना वश में है कि उन नवयुवक जो कन्याएं थी उनको ड्रामा करने से पहले नहलाना, सुगंधित तेल से सारा उनका वो जो मसाज करना, फिर श्रृंगार कराना, वो सब करते हुए उनके हृदय में कोई विकार नहीं आता था। और लिखा है महाप्रभु ने कि वैसे सन्यासी काठ की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति भी देखे तो मन का भाव बदलता है। तो एक प्रद्युम्न मिश्रा नाम का बहुत बड़ा गृहस्थ पंडित महाप्रभु के पास आया कि मैं तो विषय ही ग्रस्त हूं, आप मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। तो महाप्रभु ने कहा तुम जाओ रामानंद राय से सुनने के लिए। वो रामानंद राय के वहां गया, बाहर बैठा, तो कहा रामानंद राय क्या कर रहे थे? तो वो तो देवदासियों का स्नान करा के तेल लगा के मालिश कर रहे। रामानंद राय थोड़ी देर के बाहर आए, बोला मुझे किसी ने बताया नहीं आपसे मिलने का, महाशय मुझे क्षमा करना, मैं आपकी सेवा कैसे करूं? बोला चैतन्य महाप्रभु ने मुझे भेजा था कृष्ण कथा सुनने के लिए। बोला अब तो आज देर हो गई है, उनको भी भूख लगी थी। प्रद्युम्न मिश्रा को बोला कल आऊंगा। महाप्रभु ने पूछा आप गए थे? बोला महाप्रभु मैं गया तो था वहां, लेकिन वो तो देवदासियों की मालिश कर रहे थे। तब महाप्रभु ने कहा वो कुछ भी करे लेकिन उनका मन इतना स्थिर और शुद्ध है, वैसे वो तो ललिता है ना, ललिता विशाखा है, तो देवदासियों को उस वो अपने उस भाव में रहते थे। अब एक स्त्री दूसरी स्त्री को श्रृंगार कराएगा तो कौन सा भाव आएगा? कोई नहीं भाव आएगा। तो वो जब उनको श्रृंगार करते थे अपने विशाखा के भाव में स्थिर हो जाते थे, तो अपने उस भाव के राज्य में ये कार्य करते थे। तो प्रद्युम्न मिश्रा इस कथा में ये बताया इसलिए कि हम लोगों को ईर्ष्या के और काम के कीटाणु ने काटा हुआ है, इसलिए महाप्रभु हमको रामानंद राय के पास भेज के वहां वो अच्छे वैद्य है, भाई वैद्य क्या लिखेगा, दवाई लिखेगा, लेकिन लेना तो जाना पड़ेगा ना वो डॉक्टर वो स्टोर वाले के पास, तो रामानंद राय का दुकान से दवाई लेनी पड़ेगी, तो वहां जाने से ये सब पीड़ा अपने आप नाश हो जाती है। तो ये रामानंद राय की जो महिमा महाप्रभु ने ऐसी, और वहां फिर आखिरी श्लोकों में ऐसे लिखा है भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा श्रेय अपने भक्तों के दिया और भक्तों के माध्यम से प्रचार कराया। कैसे? अब ये मिश्रा जी तो बड़े पंडित जी थे, बड़े विद्वान थे, और इसको शिक्षा किससे दिलाई? बोला एक सूद्र से, रामानंद राय से, कहा कि उससे कृष्ण भक्ति सीख के आओ। तो महाप्रभु ने ऐसे ये सब असल में ये क्या है, ये काम के कीटाणु है, ये अपने अहंकार के बीज हैं, और इनमें से निकालने के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी जगह भेजा जहां से शिक्षा लेने के बाद उनका कोई अहंकार बाकी बचा ही नहीं। तो अहंकार से शून्य करने के लिए बहुत अच्छे, आखिर में बहुत अच्छे श्लोक हैं, कभी बैठ के एक अध्याय तो रोज पढ़ लेना चाहिए मेरे ख्याल में, इसका नहीं चेतना चरित्र मृत्यु अध्याय अध्याय कभी पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो और किसी का कुछ विचार हो रामानंद राय के तिरुभाव तिथि में स्मरण में आता हो ऐसा? ये दो तीन श्लोक ऐसे हैं। हरिदास द्वारा नाम महात्म्य प्रकाशा, सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलासा। अब एक मुसलमान के घर में जन्म लेने वालों को नाम आचार्य बना दे, दुनिया को बोला इससे दिखती को, और सनातन गोस्वामी को कहा था कि मुसलमान की नौकरी किया है तो ये अच्युत हो गया, उसके द्वारा भक्ति के सिद्धांत को स्थापित कराया। तो महाप्रभु ने क्या काम किया है? भक्ति प्रेम तत्व कहे राय करी वक्ता, आपनी प्रद्युम्ना मिश्रा सह है श्रोता। रामानंद राय को वक्ता करके और प्रद्युम्ना मिश्रा को भक्ति सिखाई कृष्ण की, और हरिदास को नाम आचार्य बनाया सनातन से सिद्धांत। तो जो दुनिया के अंदर इसको आश्चर्य ये लगता है कि ऐसे ऐसे लोगों को जो समाज में बड़े आदर जिनको नहीं मिलता है, उनको महाप्रभु ने शिखर के ऊपर बिठा के बड़े बड़े पंडितों को शिक्षा दिलाई। ऐसे शिला प्रभुपाद ने वृंदावन के अचको छोड़ के और अमेरिका के अंदर हिप्पियों को बड़े साधु सन्यासी बना के दुनिया को शिक्षा दिला दी। बड़ा आश्चर्य लगता है, बहुत आश्चर्य लगता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान की भगवत्ता क्या है, बोला ऐसे लोगों से भी ऐसा काम करा सकते हैं कि दुनिया उनको देखती रह जाती, उनसे ऐसा काम करा लेते हैं कि दुनिया देखती रह जाती, ये आश्चर्य है। एक भक्त हमारे पास, अभी तो शरीर छूट गया, छोटा ही था उम्र का, वर्ण आश्रम उसका नाम था। वो वर्ण आश्रम तो पहले आया तो गौशाला में गोबर के लिए उसको रखा था, फिर वो लाइफ मेंबरशिप करने लगा तो महीने के 2-1 लाख रुपये कहीं से लाता था। मैं कहा भगवान इस दुनिया में है, अगर आपको प्रमाण चाहिए कि इसको भी लोग 2 लाख रुपये देते हैं, इसका मतलब भगवान है दुनिया में, उसको कोई 2 रुपया भी नहीं देगा ऐसे। वैसे उसको नौकरी में कोई 2 रुपया भी नहीं दे, बात करना आती नहीं थी, लेकिन वो किसी के पास जाता था, उठता नहीं था, उसको जान छुड़ाने के लिए देने पड़ते थे। तो भगवान है, ऐसे लोगों से भगवान काम लेता है, आश्चर्य लगता है, बहुत आश्चर्य लगता है कैसे चैतन्य महाप्रभु ने किस किस से काम लिया और कैसा काम लिया, प्रभुपाद ने किस किस को किस किस स्तर के ऊपर पहुंचा दिया, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो रामानंद राय महाप्रभु स्वयं उनसे कथा सुन के बहुत बड़ा जो है एक रहस्य का उपटार खोल के भंडारा खोल दिया। तो ये पूरी कथा तो 10-1 दिन कम से कम होनी चाहिए, रामानंद राय की कथा जो है बहुत अच्छी है। हमने तो वो सेक्शन लिया जिसमें हमको क्या करना चाहिए, उत्तम विद्या क्या है, उत्तम श्रेय क्या है, उत्तम ख्याति क्या है, ऐसे 4 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु ने रघुपति उपाध्याय से पूछा था कि कृष्ण का कौन सा रूप पूजनीय है, बोला श्याम सुंदर, बोला कौन सा उसका उम्र, बोला किशोर, बोला कौन सा धाम, बोला वृंदावन, बोला कौन सा भगवान श्री कृष्ण की रस में कौन सा रस श्रेष्ठ है, बोला आदि रस। तो इस सिद्धांत स्थापित दूसरे के मुख से कराए, ये एक कला सीखनी चाहिए, काम आपका हो और कराओ दूसरे से सिद्ध, बहुत बड़ी बात है, ये महाप्रभु का अद्भुत शिक्षाएं हैं। और ऐसे ही प्रभुपाद गौरवाणी का प्रचार किया तो गौर भाव के अंदर चैतन्य महाप्रभु के भाव में नित्यानंद के ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा ऐसे ऐसे चमत्कार कराए कि आश्चर्य लगता है। ये पूरी टेलीविजन के ऊपर, ITV इस्कान टेलीविजन के ऊपर अब सब दर्शन हो रहे हैं, पूरी भगवद गीता हो गई, वो हरिदास के द्वारा कराया बड़े जो जेब कतरा था, वो बॉम्बे के जेब कतरे को प्रभुपाद की घड़ी को चुराने के लिए जेब जेल में था और प्रभुपाद के हाथ में गोल्डन घड़ी को देखा, बोला निकल के यही चुराऊंगा, उसको चुराने के लिए प्रभुपाद के पास गया, प्रभुपाद ने उसी का दिल ही चुरा लिया और उसको महात्मा बना दिया और आज वो पूरी दुनिया को कृष्ण कथा सुना रहा है जो लोगों के जेब काट रहा था। कैसा प्रभुपाद ने कैसे कैसे लोगों से काम लिया है, आश्चर्य लगता है, बहुत आश्चर्य लगता है। हरे कृष्ण। रामानंद राय की हो गोविंद।